एस्कटोलॉजी के बारे में जैसे मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था, ये बेसिकली दुनिया के खात्मे के इल्म को कहा जाता है। और इसमें हमने बात की थी, इसमें फितनों का जिक्र भी होगा, इसमें अशरातुस्साअ यानी साइंस ऑफ द आवर उसका जिक्र होगा। और इस हवाले से फिर हमने बात की थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी हो जाता है आजकल के दौर में। और इसी तरीके से फिर ये भी बात की थी कि ह्यूमन नेचर भी यही है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारा एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है इस तरह की चीज़ों की तरफ। तो ये भी हमने बात की थी पिछली दफ़ा। और उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की थी जो आम तौर पे हमारे कुछ इनएक्सपीरियंस्ड किस्म के लोग जब इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं और जो जो मसाइल पेश आते हैं, फिर उस हवाले से हमने कुछ बातें की थी। इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि इसमें कुछ पोटेंशियल हार्म्स भी हैं, यानी इस टॉपिक पे बात करने के कुछ पोटेंशियल हार्म्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हमने ख्याल रखना है ताकि हम उसका शिकार ना हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर जब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाती है इस तरह के टॉपिक्स पर तो फिर सूथ सेइंग या पामिस्ट्री या इस तरह के जो ये कोहानत जिसको हम अरबी में या उर्दू में कहते हैं, तो ऐसी चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं सोसाइटी के अंदर, लोग इस तरह के लोगों की तरफ जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ अनपढ़ लोग इस तरफ नहीं जाते बल्कि बहुत आप समझ लें पढ़े लिखे लोग अपने आप को जो समझते हैं वो भी इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं बहुत ज़्यादा। बाकायदा मार्केट्स के अंदर, बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर इस तरह के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो आपके लिए प्रेडिक्शंस भी करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ आपने देखा होगा कई पॉलिटिशियंस भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, यानी हमारे यहाँ एक बाबा जी मशहूर हुए थे, शायद आपको याद है कि नहीं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उन वज़ीर आज़म का, उनके पास एक छड़ी होती थी, डंडा होता था, वो मारते थे वो डंडा। वो अल्लाह की तरफ से उन्होंने एक पॉलिटिशियन को डंडा मारा तो वो वज़ीर आज़म बन गया। तो बाद में कई पॉलिटिशियंस ने राबता किया कि हमें भी आपकी इस शरफ की और फैज़ की ज़रूरत है, और उनको बकायदा वज़ीर आज़म हाउस में गालिबन रखा जाता था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। इसमें अखबारों के अंदर भी वो मशहूर वाक़ अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो फिर कई पॉलिटिशियंस ने उनसे राबता किया और उनके पास गए, और हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने सुबहानअल्लाह यानी अपनी रिहाइश को भी बदला इन सर्विस। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गालिबन कोई वज़ीर आज़म थे या वज़ीर थे कोई बड़े, तो उन्होंने अपनी जगह को इसलिए बदल दिया क्योंकि एक पीर साहब ने कहा था कि आप जो है ना इस जगह में आपके लिए बेहतरी नहीं है, बल्कि ऐसी जगह पे जाएं जहां पे साहिल आपको मिल जाता है, तो समुंदर के किनारे, तो वो कराची शिफ्ट हो गए। अब कहने का मतलब है कि इस तरह के लोग जो बज़ाहिर बड़ी बड़ी यानी मॉडर्निटी से आप कह सकते हैं एक्सपोज होते हैं, और आमतौर पर इस तरह के लोग ज़ाहिर दीन से भी दूर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुबहानअल्लाह इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं। वो हमारी एक ज़माने में फ़ीमेल वज़ीर आज़म रही हैं, आपको पता है, तो उन्होंने भी यही किया जब वो पाकिस्तान में आ रही थी, तो उन्होंने आने से पहले कंसल्ट किया इस तरह के लोगों से ना, मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं। इसी तरीके से दूसरी बड़ी चीज़ जो मैं आप सब आपके सामने जिक्र कर रहा था, जिस पर हमने अपने लास्ट सेशन को कंक्लूड किया था, वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मसला। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो वाकयात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, यानी जिन वाकयात की बुनियाद पर हम ये समझ सकें कि किस तरीके से बाज़ुकात ये चीज़ हमें इन्फ्लुएंस करती है। यानी इंसान नेचुरली ना, जब इंसान को पता होता है कि यही होने वाला है और वो समझ लेता है, तो इंसान फिर एक किस्म का मजबूर अपने आप को समझना शुरू हो जाता है। वो समझता है कि अब मेरे ऊपर जबर है, अब मुझे इस तरीके से ऐड करना है। बाज़ुकात वो कॉन्शियसली करता है, बाज़ुकात वो अनकॉन्शियसली ये बात कर काम करता है। तो इस हवाले से मैंने आपके सामने एक क्लासिकल एग्जांपल, बल्कि एक दो क्लासिकल एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। ये जो हमारे यहाँ महदी का तसव्वुर है, ठीक है ना, महदी का तसव्वुर बहुत कॉमन है, और पाकिस्तान के अंदर भी इस टाइम कई महदी आ चुके हैं, ठीक है ना, और कई حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہونے کا کلیم کر چکے ہیں. یہاں پہ تو نہیں کوئی بیٹھا ہوا مہدی چلے شکر. تو کئی ماشاء اللہ لوگوں نے اس کی طرف یعنی اس کے وعدے کی یعنی اس کے سوری دعوے کیے ہیں. ہماری تاریخ کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یعنی مہدی کے بارے میں جو ہمیں پریڈکشنز ملتی ہیں یا پروفیسی ملتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا, اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لینیج میں سے خاص طور پہ ہوگا. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پوتے تھے ان کا نام تھا محمد بن حسن, محمد بن عبداللہ ابن حسن, یہ سیدنا حسن کے پوتے تھے جن کو نفس زکیہ بھی کہا جاتا ہے. ان کا لقب تھا نفس زکیہ, بڑے مشہور یہ یعنی شخصیت تھی. تو انہوں نے اپنا نام مہدی رکھا, اور اپنا نام اس لیے مہدی رکھا بیکاز ہی واز ایکسپیکٹنگ اینڈ اسیومنگ ہم سیلف ٹو بی دا سیم مہدی, وہی جو مہدی جس کا احادیث میں تذکرہ ہے کہ میرے تو دادا جان جو ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے, ہاشمی خاندان ہے. تو انہوں نے ایک قسم کی سیلف فلفلنگ پروفیسی کا بھی وہ شکار ہوئے. تو ان کی کوشش بہت تھی کسی طریقے سے میں وہ بنے کام کروں جو کہ مہدی کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک قسم کا وہ پرسونا اسیوم کر لیا اپنے لیے نہ چاہتے ہوئے, لیکن بہرحال وہ مہدی تو نہیں تھے کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال ان کے دور میں نہیں آئے, ٹھیک ہے. اور دجال کا بھی معاملہ ان کے دور کے اندر رونما نہیں ہوا. اسی طریقے سے بنو عباس یعنی عباسٹ جو تھے, ٹھیک ہے, بنو امیہ آپ کو پتا ہے امیت آئے تھے خلفاء, اس کے بعد عباسٹ آئے تھے. بنو عباس میں ایک شخص تھا, ایک یعنی خلیفہ تھا جس کا نام تھا ابن المنصور, اس نے بھی اپنا لقب مہدی رکھا تھا, یعنی اس کو عام طور پہ مہدی ابن المنصور کہا جاتا, بنو عباس کا خلیفہ تھا. اور اس نے بھی اپنے نام کے ساتھ کیا رکھا لگایا, مہدی اس لیے لگایا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں بھی کیا کروں, میں بھی وہی شخصیت ہوں جس شخصیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسائز کیا. لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی یہ ثابت نہ ہوا. اسی طریقے سے یہ معاملہ اس حد تک بھر چکا کہ 1970s کے اندر یعنی 1979 کے اندر ایک بہت ہی پریشان کن واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جہیمان العتیبی. یہ جو شخص تھا عتیبہ ایک قبیلہ تھا, اس سے اس کا تعلق تھا. اس نے سعودی عرب کے اندر ایک موومنٹ اس کا آغاز کیا. اچھا انفلوئنشل آدمی بہت تھا, بہت ایلوکوئنٹ سپیکر تھا, اور بڑے نوجوان لڑکے اوور زیلس یوتھ جن کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دین کے لیے بہت زیادہ کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ اور ریولیوشنری سوچ, انقلابی سوچ. اب یہ انقلابی سوچ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے آج کل, انشاءاللہ اس پہ بھی کسی کچھ سیشنز کے بعد ہمارا جو سیشن اسپیشل سیشن ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس طرح کے کچھ ریولیوشنری یوتھ وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اس شخص کے ساتھ. اس کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام تھا محمد بن عبداللہ القحطانی. اچھا یہ جو قحطانی قبیلہ ہے نا, یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. اصل میں قحطانی قبیلہ ہے کون سا؟ یہ قبیلہ وہ ہے یعنی ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لینیج ہے وہ ساری کی ساری عربی ہے. ایسی بات نہیں, بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہمارے استاذ جو تھے وہ جب عربوں سے ان کی ملاقات ہوتی اور وہ کبھی فخر کرتے اپنی عربیت کا, بینگ ان عرب, اور وہ کہتے جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے, تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لینیج عربی نہیں تھی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان عربی نہیں تھی. کون سی زبان تھی بھائی؟ عبرانی زبان تھی نا, کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, سیدنا ابراہیم کے بیٹے تھے نا, سیدنا ابراہیم عربی تو نہیں بولتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عبرانی زبان بولتے تھے, ہیبریو بولتے تھے. اچھا وہ جو لینگویج تھی سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ وہی بولتی تھی لینگویج. جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا حجاز میں, ठीक है, वो वाक्य आपने सुना हुआ है जिसमें मक्का के अंदर उन्होंने यानी उनको छोड़ा और फिर वो चले गए वहां से, और वहां पे आपको पता है एक कबीला आया था यमन से, जो वहां पे आके जब उसने देखा कि यहां पे तो पानी है तो वो वहां पे आबाद हो गया, और फिर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी उस कबीले से हुई। वो असल में कबीला अरबी कबीला था और वो कहतानी कबीला था और वो यमन से आया था और वो यहां पे आके सेटल हुए जब उन्होंने देखा यहां पे तो पानी है जमजम। तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी अपने ससुराल से सीखी है, असल ये असल बात है, खुद वो अरबी नहीं थे लेकिन बाहर आगे पूरा खानदान फिर आगे से जो नस्ल चली, और अल्लाह के रसूल हमारे जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के जाहिर है औलाद में से। तो कहतानी कबीले से उसका ताल्लुक था उस शख्स का, तो अल्लाह के रसूल का हाशमी खानदान, साथ उसका नाम भी मोहम्मद है जैसा कि आमतौर पर जिक्र आता है रिवायात के अंदर, और उसके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला है। तो जुहैमान अल-उतैबी ने कहा कि तुम वो खलीफा हो। अच्छा, अहदीस के अंदर इस बात का भी जिक्र आता है कि महदी जो है, और इस पर इंशाल्लाह हमारे आगे सेशंस होंगे, इस पर हम इस तरह के टॉपिक्स पे भी, दज्जाल पे भी बात करेंगे, महदी पर भी बात करेंगे। तो उसके बारे में ये बात है कि उसको खुद नहीं पता होगा वो महदी है, और उसको उलमा जो है स्कॉलर्स वो बताएंगे कि तुम महदी हो सर, और उसके हाथ में बैत करेंगे। तो जुहैमान अल-उतैबी जो था और इसके साथ और भी जो प्रैक्टिसिंग यूथ थे, बड़े माशाल्लाह, मतलब जज्बा तो होता है, सिंसेरिटी और इखलास तो बहुत था, लेकिन बहरहाल शैतान के हथकंडों का शिकार हो गए, उसके ट्रैप्स के अंदर आ गए। तो हुआ यह कि उन्होंने क्या किया कि जुहैमान अल-उतैबी ने कहा कि तुम खलीफा हो, और खलीफा के बारे में यह आता है कि वो अपनी खिलाफत का ऐलान करेगा जाके मक्का के अंदर बैतुल्ला के सामने, और फिर जोहर की नमाज के बाद बैत होगी, जहां तक मुझे याद पड़ता है जोहर की नमाज या असर की नमाज, बहर किसी नमाज के बाद वो लोगों के को बैत का ऐलान करेगा और सारे आके उसके हाथ में बैत करेंगे और वो खलीफा करार दिया जाएगा। ये इस तरह की रिवायात है। तो उसने क्या किया कि ये पूरा एक ग्रुप गया और इन्होंने एक मिलिट्री कूप किया ऑर्गेनाइज, और इन्होंने जाके क्या किया, मक्का को सीज कर लिया, यरगमाल बना लिया, और उसके दरवाजों के ऊपर ये सारे नौजवान अपनी गन्स और अपना आर्टिलरी लेके खड़े हो गए, और अंदर जो है जो इनके खलीफा थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-कहतानी उसका नाम था वो, और इसके साथ उसका जो असिस्टेंट था जो जुहैमान अल-उतैबी वो अंदर थे, और वहां पे जाके उस टाइम गालिबन यानी तवाफ कुछ देर के लिए रुका, पहली दफा सुना तारीख के अंदर जो है ना वो काबे का तवाफ रुका उस वजह से कुछ वक्ती तौर पर, और फिर इन्होंने क्या किया कि उसको सीज किया और इन्होंने खिलाफत का ऐलान किया कि मैं महदी हूं और जी आए बैत के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि मेरे नाना जान जो थे मसल अली मदीना, उस वक्त वो उस मक्का यानी हरम के अंदर तवाफ कर रहे थे, और मेरे नाना जान उस शख्स से जाके मिले थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-कहतानी जिसने ऐलान किया था महदी होने का। तो मेरे नाना जान समझ गए और उन्होंने कई लोगों को रिकग्नाइज किया, अच्छा ये फला फला, और वो नेक लड़के थे सारे, मदीना यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ वैसे ही प्रैक्टिसिंग बॉयज यूथ थे, तो उन्होंने बस समझा कि ये अब खलीफा है और हमने महदी के लश्कर में शामिल होना है, और वो सारे माशाल्लाह इन्फ्लुएंस हो गए। अच्छा, फिर हुआ ये, अल्लाह माफ करे, कि वो गवर्नमेंट फिर जाहिर है उस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया से एड आई और कमांडोज गए, इवन मारूफ है कि पाकिस्तानी कमांडोज भी गए, पता नहीं बात सच्ची है कि नहीं, और वो गए और उन्होंने जाके क्या किया, स्पेशल जो है ना वो असलहा भी मंगवाया गया मुख्तलिफ मुल्कों से, और फिर क्या हुआ कि एक कंबाइंड ऑपरेशन किया गया और उन सब लोगों को जो है वो पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद इन सबको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, अल्लाह माफ करे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो था, जो महदी था, उसको भी इन्होंने यानी इसी दौरान उसकी भी असैसिनेशन हो गई इस कॉन्फ्लिक्ट के। इसी तरीके से फिर जुहैमान अल-उतैबी और इसके साथ और भी शख्स थे, इसको भी बाद में गालिबन, या फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी, और इनको पकड़ लिया गया, या फिर उसी वक्त दरमियान में होगी, बार कुछ को बाद में जाके फांसी हुई और उनको बकायदा सजाए मौत दी गई, और ये सब वाकयात जो हैं ये आराम से इसके ऊपर बकायदा डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं और ये डॉक्यूमेंटेड। अब प्रॉब्लम क्या हुई, असल में सवाल ये पैदा हुआ ना कि असल में कहाँ से ये मसला, इसका आगाज हुआ। तो आगाज वहीं से हुआ कि इन्होंने समझा कि बस ये महदी आ गया और मेरे अंदर वो क्वालिटीज पाई जाती हैं, तो अब मैंने वही सारे काम करने हैं जो महदी करेगा। तो उन्होंने जाके एग्जैक्टली उस प्रोफेसी के मुताबिक वो काम करना शुरू कर दिया, जबरदस्ती जाके ना। वो जैसे मैंने आपको एक खातून की किताब का बताया था, फोर्सिंग गॉड्स विल या गॉड्स हैंड, कि हमने फोर्स किया खुदा के हाथ को कि जिस तरीके से खुदा ने बताया ऐसा होगा, तो अब हम इस तरीके से खुदा से जबरदस्ती ये काम करवा रहे हैं। यानी उन हालात को उस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं जिस तरीके से प्रोफेसाइज और प्रिडिक्टेड है। फोर्सिंग गॉड्स हैंड की किताब का हमने लास्ट टाइम अपने सेशन में जिक्र किया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत से लोग आजकल इसी चीज का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, ये हर दूसरे दिन महदी बनने का, आपको पता है कि ये हमारे यहां भी बहुत से लोगों को शौक है खासतौर पर बनने का। तो प्रॉब्लम कहां पे हुई? तो कुछ लोग तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार है, यानी मैल इंटेंशंस भी हो सकती हैं, जाहिर है। यानी मैल इंटेंशंस ये कि भाई मैं महदी बन जाऊंगा तो मुझे भी एक फॉलोइंग मिल जाएगी और मुझे बड़े फायदे होंगे, जिस तरीके से हमारे यहां गुलाम अहमद कादियानी ने भी ये काम करने की कोशिश की, फिर उसने मुख्तलिफ दावे किए उसने। तो मैल इंटेंशंस भी हो सकती हैं, मतलब ये भी एक वन ऑफ द रीजन। इसके साथ साथ एक और रीजन ये होता है, बाज़ुकात स्किज़ोफ्रेनिक भी होते हैं कुछ लोग। अच्छा, ये बड़ा अहम मसला है, कुछ लोग साइकोलॉजिकली या मेंटली जो है ना, वो मेंटल प्रॉब्लम्स का या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिक जो लोग होते हैं आमतौर पर, उनके यहां ये प्रॉब्लम ये होती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि वो बाज़ुकात रियलिटी और इमेजिनेशन के दरमियान फर्क नहीं कर पाते। यानी जो उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड होती है वो इस तरीके से उनके दिमाग पर डोमिनेट कर जाती है कि वो समझते हैं कि शायद यही असल है, और रियलिटी के अंदर उसको वो देखना शुरू कर देते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं वो इन आयात और इन वाकियात से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके साथ स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, तो वो समझते हैं कि मैं ही मैदी हूं, और फिर वो इस तरह का दावा करना शुरू कर देते हैं। और जेन्युइनली कभी आप उनसे पूछें तो वो बेचारे, यानी हालांकि उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स का बहुत शिकार होना पड़ता है, बहुत उनको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, बाज़ुकात अथॉरिटीज भी जो है उनको पकड़ लेती हैं, तो लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं जी मेरे साथ यही है, मेरे सामने तो मुझे तो वही होती है। कई तो अल्लाह माफ करे, ईसा अलैहिस्सलाम बन के वही का दावा कर लेते हैं, मेरे पास तो खुदाई। वो हमारे यहां भी, यहां पर एक शख्स आया था, आपको पता है कि जिसने अपने ख्वाबों की वजह से दावा किया हुआ आजकल, ठीक है ना जी, मुझे ख्वाब आते हैं सच्चे ख्वाब तो हर दूसरे बंदे को आ रहे होते हैं। सच्चे ख्वाब आना ये काफी नहीं है महदी होने के लिए ना, वो महदी होने के लिए पूरा एक पर्सोना है वो, अगर आप कुरान हदीस से देखते हैं तो माजर के साथ वो फिट नहीं होता। तो अगेन, लेकिन वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनाने के लिए उन्होंने बड़ा कुछ किया। तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे इस तरह की चीजें, फिर मुझे कुछ उसके फैंस मिले, वो सर आप उनके पढ़े, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, किताबें, ये आप ये जरा लिटरेचर पढ़े उनका, आपको पता चलेगा आप भी वाकई इन्फ्लुएंस होंगे। बल्कि मुझे याद है कि हमने इसके ऊपर एक छोटा सा एक वीडियो तैयार किया, तो उसके ऊपर बकायदा उन्होंने एकेडेमिक रेफ्यूटेशन की मेरी, कि जी हम आपकी एकेडेमिक रेफ्यूटेशन करते हैं कि आपने जो हमारे बारे में एलिगेशंस और क्लेम्स किए हैं, हम बताते हैं कि हम क्यों महदी हैं। सही है, यानी जिस बंदे को हम महदी समझते हैं वो क्यों महदी है, लोगों ने मतलब ये काम शुरू किया। तो ये चीज हमारे यहां बहुत ज्यादा कॉमन फैल गई है, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का बहुत बड़ा इशू। अच्छा, आगे चलते हैं, मैं आपके सामने ना कुछ जनरल कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना है जब हम इस तरह की अहादीस या इस तरह की चीजों के बारे में स्टडी करते हैं या सुनते हैं। पहली बात तो एक ही हमें समझनी है कि देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हद तक हमें बता दिया ना, वो प्रोफेसीज के बारे में या इसी तरीके से फ्यूचर के बारे में, वो काफी है, वो सफिशिएंट है हमारे लिए। जितनी हमारे लिए, जितनी हमें जरूरत थी इनफैक्ट इस तरह की चीजों की, उतना हमें पता। अब इससे ऊपर जबरदस्ती कोई चीजें प्रिडिक्ट करना या उनको किसी सेकेंडरी सोर्सेस से निकालना ताकि कोई सेंसेशन क्रिएट हो सके, या फिर कुछ ना कुछ आप एक नैरेटिव बिल्ड कर सके, कुछ भी इस तरीके से काम करना, ये चीज ठीक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहादीस हैं अशरातुस साआ के बारे में, इसी तरीके से जो भी आपने प्रोफेसिस की हैं उसके हवाले से, चाहे वो महदी हो, चाहे दज्जाल हो, चाहे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हो, ये सब वो सही अहादीस वो हमारे लिए काफी हैं, इससे आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ उलूम को इंप्लॉय करते हैं ताकि उनसे हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकाल सके, जैसे सूद सही कोहानत का भी फायदा लेते हैं, इल्म नजूम जो है, एस्ट्रोलॉजी, एक तो है ना एस्ट्रोनॉमी, एक है एस्ट्रोलॉजी, ये आप सितारों का इल्म है, اس سے بھی وہ کیا کرتے ہیں, اس سے بھی اس کو بھی امپلائے کرتے ہیں. پھر نیومرولوجی, علم الاعداد, یہ ابجد کا علم ہے. آپ کبھی اپنے تعویذ کو کھولیں, پہلی بات ہے وہ کھلتا ہی نہیں ہے, وہ بنایا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ کھولا نہ جا سکے, ٹھیک ہے نا. وہ ایسی ایسوٹیرک نالج ہے اس کے اندر کہ وہ آپ تک اس کی رسائی نہیں ہے. بہرحال تو اس کو اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر ہمیشہ آپ دیکھیں گے ڈبے بنے ہوئے, اور ان ڈبوں کے اندر نمبرز لکھے ہوئے ہیں. اور علم الاعداد جو نیومرولوجی ہے اس کے اندر آپ انکوڈنگ کر سکتے ہیں, آپ ڈی کوڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے بھی تھوڑا بہت اس کا پتا ہے, ٹھیک ہے. آپ انکوڈنگ کر سکتے ہیں, آپ ڈی کوڈنگ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کسی فریز کو نمبر سے ریپرزینٹ یا مینیفیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ نمبرز دیکھیں تو آپ یہ ڈیٹرمن کر سکیں کہ اصل میں کیا چیز ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. اٹ اونلی ورکس ون وے, ناٹ دی ادر وے. ہاں کچھ چیزیں مشہور ہو گئی, جیسے ہمارے یہاں 786, 786 اس کا مطلب بسم اللہ. اب یہ 786 بسم اللہ کیسے بنایا؟ یہ علم الاعداد سے, نیومرولوجی میں اس کا پورا ایک ٹیبل ہوتا ہے کہ یہ جو الفابیٹ ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس نمبر کو, یہ الفابیٹ اس نمبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جب آپ اس کو ٹوٹل کرتے ہیں سارے الفابیٹس کو ملا کے تو وہ جو 786 نمبر بنتا ہے, 786, تو وہ آپ کہتے ہیں 786 از ایکچولی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مطلب یہ ہمارے یہاں تو, لیکن یہ مشہور ہو گیا نا. اب 786 کسی جگہ لکھا ہو, اب میں کروں اس کو ڈی کوڈ کریں بتائیں بسم اللہ کیسے بنتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. بلکہ مزے کی بات ہے کئی ایسی عجیب و غریب اور گندی اسٹیٹمنٹس ہیں. ہمارے استاد جب پڑھا رہے تھے ہمیں, جب ہم نے پڑھا اس کے بارے میں, تو انہوں نے پھر ہمیں کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس بتائی جو شیطانی اسٹیٹمنٹ تھی, جس سے بھی جس کا اینڈ ریزلٹ بھی 786 آتا ہے. اب بہت سی اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں جس کا اینڈ ریزلٹ 786 بن سکتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ نیومرولوجی, اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے اور بھی سورسز کو یوز کیا. مثال کے طور پہ اسرائیلیات, پرانے جو اسکرپچرز ہیں, تورات ہو گیا, انجیل ہو گیا, اسی طریقے سے ان کے جو سیکنڈری سورسز ہیں. ایک تو جس طرح ہمارے ہاں ہمارا پرائمری سورس کیا قرآن و حدیث ہے, ہمارے سیکنڈری سورسز بھی ہیں اور بھی ہیں نا, فقہ بھی ہو گئی ہماری, اور بھی سورسز ہو گئے, ہمارے علماء کی کتابیں ہو گئی. اسی طریقے سے جو پرانے یعنی ادیان ہیں یا پرانے اسکرپچرز ہیں, یا جو آپ سمجھ لیں کہ عیسائی اور یہودی ہیں, ان کے بھی سیکنڈری اسکرپچرز ہیں. اچھا وہاں پہ بڑی عجیب و غریب ڈیٹیلز ملتی ہیں, تو وہاں سے بھی انہوں نے کچھ چیزیں نکالنا شروع کر دی, ان کی فقہ کی کتابوں سے بھی چیزیں نکالنا شروع کر دی. اور کیا کیا کہ اس کو کیا کیا کہ ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, خاص طور پہ دجال کے اوپر, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یا اشراۃ الساعۃ کے حوالے سے, ان کی میتھڈالوجی کے اندر یہ چیز بہت کامن ہے کہ وہ صرف قرآن و سنت پہ ریلائی نہیں کرتے. میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم, کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا انسانیت کی تاریخ کے اندر, ہیومن ہسٹری کے اندر, انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جس نے ہر وہ چیز, یہ نبی کی ذمہ داری ہے, نبی کی بنیادی رسپانسبلٹیز میں سے یہ بات تھی کہ جو چیز امت کے لیے خیر کی تھی نا, فائدہ مند تھی, ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی, اور یہ امت کا نبی کے اوپر حق ہے کہ نبی کیا کریں کہ وہ خیر کی بات ان تک پہنچائے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شر کی چیز ہے, کوئی ایول ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے, یہ پہنچا سکتا ہے انسانیت کو یا امت کو کسی بھی صورت میں, تو ہر نبی کی ذمہ داری تھی کہ اس کے بارے میں کیا کرے, لوگوں کو وارن کر دے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خیر وہی ہے جو نبی نے بتا دیا, اور شر بھی وہی ہے جو ہمارے دین نے جس کی طرف وضاحت کر دی. اب کوئی بندہ کہے نہیں, جی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو امت کے لیے فائدہ مند ہے لیکن ہمارے نبی نے نہیں بتائی, وہ ہمیں دوسرے سورسز سے مل جائے گی, تو یہ چیز فنڈامنٹلی غلط. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں آلریڈی پہلے ذکر کر دیا, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس تک محدود کریں. اسی طریقے سے ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک کتاب عقیدہ تحاویہ کا کس کس کو پتا, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. عقیدہ تحاویہ کا پتا کسی بھائی کو یا بہن کو؟ چلے, ہمارے ہاں ایک عقیدہ کا ٹیکسٹ ہے جس کو کمپائل کرنے والے لکھنے والے امام تحاوی ہیں, اور یہ عقیدے کا وہ ٹیکسٹ ہے جس کے اوپر چاروں سکول آف تھاٹ کا اتفاق. ہمارے یہاں چار سکول آف تھاٹ ہیں نا بنیادی طور پہ, کون کون سے جی؟ مالکیہ, حنبلیہ, شافعیہ اور حنفیہ, ये चार स्कूल्स ऑफ थॉट है। इमाम तहावी का ताल्लुक हनफी स्कूल ऑफ थॉट से था, बहुत बड़े इमाम हैं हनफियों के, अहनाफ के। तो इनका एक टेक्स्ट है जिनको कहते हैं अकीदा तहावीया, यानी इनके नाम से मशहूर है, इमाम तहावी इनका नाम था, पूरा नाम तो यानी उनका टाइटल है तहावी, उनकी नस्बत थी तहावी की, तहावीया की तरफ। तो उनका एक टेक्स्ट है जो अकीदे के अंदर, उन्होंने एक चीज जिक्र की बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं ये यानी कहते हैं इल्म दो तरह के हैं, लिअन्नल इल्म इल्मान, इल्म फिल खल्क मौजूद व इल्म फिल खल्क मफकूद। कहते हैं दो तरह के इल्म है, एक वो इल्म है जो हमारे दरमियान मौजूद है और एक वो इल्म है जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया, हमारे दीन ने बता दिया, और कुछ चीजें अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन ने नहीं बताई, नहीं बताई। तो कहते हैं फइनकारुल इल्म मौजूद कुफ्र, जिस चीज का हमें बता दिया उसका इनकार करना कुफर है। जाहिर है अब कुरान और सुन्नत की कोई आयत या हदीस है जो हम तक पहुंच गई, उसका इनकार हम अगर वो सही वे सही सोर्स से हदीस कोई पहुंच जाती है हम तक, तो उसका इनकार करना क्या हो जाएगा भाई। तो जो जो चीजें आयात और अहादीस या वो चीजें जो अशरात या साइंस ऑफ द आवर द एंड ऑफ टाइम्स के बारे में हमें बता दी और वो सही तरीके से हम तक पहुंची, उसका इनकार क्या हो जाएगा भाइयों बहनों, कुफर है। फिर कहते हैं वद्दियाउल्इल्मिल मफकूद कुफ्र, जहां पे जो चीज मौजूद है जिसका हमें पता हम तक पहुंच गई उसका इनकार कुफर है, इसी तरीके से वो चीज जिसका हमें बताया नहीं गया उसके बारे में दावा करना भी कुफर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात। हमारे यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, यसअलूनक अनिस साअति अय्यान मुर्साहा, क़यामत कब आएगी जी। आपने क्या फरमाया, कुरान ने कह दिया ना कि कहो कि मेरा ये इल्म अल्लाह के पास है। अब ये इल्म हमें नहीं बताया गया, अब कोई बंदा अगर इस इल्म का दावा करता है कि मेरे पास वो नॉलेज है जी, मैं बता सकता हूं कि वो क्यामत कब आएगी, अगर कोई बंदा इस बात का दावा करता है और एक्चुअल में वो आपको डेट्स एंड टाइम्स भी बता देता है, ये महीना इस टाइम ये होगा वो होगा, या फिर कुछ ऐसा दावा करता है, तो वो कहते हैं वद्दियाउल इल्म मफकूद कुफ्र, यानी ऐसा इल्म जिसका हमें बताया नहीं गया उसका दावा करना ये इत्सेल्फ एक कुफर बन जाता है। बहुत बड़ी बात है ना कि अल्लाह कहते हैं मैंने तो बताया नहीं, मैं कहता हूं मैं बता सकता हूं। हमारे यहां पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई और माजरत के साथ हमारे एक स्पीकर है और मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा, नाम नहीं लूंगा, फ्यूचर के बारे में उनसे पूछा कि टाइम ट्रेवल क्या मुमकिन है कि नहीं। तो उन्होंने कहा जी टाइम ट्रेवल तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, बड़ी मोहतात अंदाज में उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, ये मैं सिर्फ वजाहत के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं, वजाहत के लिए, बाज़ वक़्त इंसान से गलती हो जाती है। तो उन्होंने कहा अब तक जितनी साइंस पहुंची है, जहां तक साइंस पहुंच चुकी है ना, हम फ्यूचर में जा तो नहीं सकते लेकिन हम फ्यूचर को देख सकते हैं। यानी टाइम ट्रेवल का मतलब क्या, कि हम फ्यूचर में जा तो नहीं सकते लेकिन हम फ्यूचर को जान सकते हैं। साइंस यहां तक पहुंच गई बहरहाल, यानी साइंस का दावा है कि ये मुमकिनात में से। अच्छा, पास्ट में जाना साइंस कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप पास्ट में जाएंगे तो फिर आपका फ्यूचर पूरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं एक बंदा जो है वो पास्ट में जाता है और पास्ट में जाके अपनी अम्मा अब्बा को मिलने नहीं देता किसी तरह, तो अब सवाल ये पैदा होगा कि वो खुद कहां से वजूद में आया। अब प्रॉब्लम समझ आ गई आपको, बस फजूल एग्जांपल है लेकिन मैंने कहा चले आपसे इसे समझ आ जाएगी बात आपको। तो असल में मसला ये पास में जाना साइंटिफिकली प्रॉब्लमैटिक इसलिए है कि इट विल डिस्ट्रॉय एंड चेंज द होल फ्यूचर, और उसमें हो सकता है कुछ ऐसे मामला हो जाए जो कि यानी अब इट डजंट मेक सेंस कि वो किस तरीके से चलेंगे, लेकिन फ्यूचर में बहरहाल वो कहते हैं कि जाया जा सकता है, या फ्यूचर को अच्छा जाने की बात तो नहीं, यानी देखा जा सकता है। अब ये पॉपुलर साइंटिस्ट जो होते हैं, ये पॉपुलर साइंस इसको हम कहते हैं आमतौर पर, यानी वो साइंस वो लोग जो ओवर ऑब्सेस्ड यानी हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं ना साइंस से, तो इस तरह की बातें करते भी हैं और लिखते भी हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ एक यानी कुछ साइंटिस्ट भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं, थियोरेटिकल फिजिस्ट बहुत तरह की यानी बातें करते हैं। तो कुछ नाम भी चले, वो नाम बताने की क्या जरूरत है आपको, मैं क्यों इतने अच्छे लोगों के नाम बताऊँ आपको किताबों के, पर मुझे शौक है, मैं इस तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार क्या कहते हैं, बातें क्या करते हैं। पर वो बात करना, एक भाई ने बात कर दी। अब अच्छा, वो बात करने के बाद ये सोचा ही नहीं कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है इस बात की। अब इम्प्लीकेशन ये है कि जी मैं हम यानी एक वक्त ये मुमकिन है, यानी ये मुमकिन है कि इंसान कल के बारे में जान ले। अब कल क्या है, गैब है, قرآن کیا کہتا ہے؟ مفاتیح الغیب, یعنی غیب کی چابیاں, جو بڑی غیب کے ایلیمنٹس ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے, ان میں سے ایک ہے ماذا تکسب غدا, کہ کل تم نے کیا کرنا. اور اسی طریقے سے موت کس کو کہاں پہ آئے گی, مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غیب کی چابیوں میں سے, یعنی بنیادی غیب کے ایلیمنٹس اور فنڈامنٹل بھی ہیں, اللہ نے کہا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا, لا یعلمھا الا ھو. اب بات ہم نے کر دی, بھائی سوچے تو صحیح اس کی امپلیکیشنز کیا, اس کے کون سے کیا ہم اس طرح کا ایک کلیم کر رہے ہیں کسی پاپولر سائنس کی بنیاد پر کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ کل کو ہم اس عقیدے کے فنڈامنٹل کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. بہت بڑی کانٹرڈکشن, سمجھ آ گئی مسئلہ, سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ اس طرح کے دعوے کرنا خطرناک. یہ میں یہ اللہ معافی کریں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ, یعنی بہت سی ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے, ایسی ایسی ایگزامپلس ہیں, بلکہ آگے چل کے میں نے ایک ایگزامپل لکھی ہوئی تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک شخص نے باقاعدہ کتاب لکھی, ایک غالباً ایجپشن اسکالر نے, سائنس آف دی آور میں, اور اس نے باقاعدہ پوری ایک ٹائم ٹیبل بتایا کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا, فلاں تاریخ کو یہ ایونٹ ہوگا, فلاں تاریخ کو یہ ہوگا, ٹو دی ایکسٹینڈ کہ انہوں نے 2010 میں قیامت نکال دی ہوئی ہے. یعنی اب ہم پوسٹ قیامت پیریڈ میں گزر رہے ہیں, اور اس وقت بڑی بات تھی, انہوں نے آرگیومنٹس کیے انہوں نے, اور بڑے لوگوں نے یہ باتیں کی نا. اور اس طرح آپ کو پتا یاد ہے ایک مووی بھی آئی تھی, ساروں کو پتا ہے, اور لوگوں نے کیا کیا, بنکرز بنوا لی ہے کہ قیامت آنے ہی والی ہے. تو زبردستی قیامت برپا نہ کریں, ٹھیک ہے؟ آپ کی ان باتوں سے ویسے ہی قیامت بہت برپا ہو رہی ہے, تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے قیامت برپا نہ کریں. کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہمارے دین نے بتا دیا وہ سفیشنٹ. اب یہ اصل میں یہ ایک رویہ نا کہ جی سفیشنسی کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سیشیشن کا, کہ بھئی جو مل گیا میرے لیے کافی, اس سے آگے مجھے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ رویہ ہے جو خاص طور پہ اس طرح کے حالات کے حوالے سے ہم سے تقاضا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات کر دیا کہ کافی ہے جتنا نبی نے بتا دیا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایول, جو شر پھیلنے والا ہے, اس کے بارے میں جانکاری بھی بہت ضروری ہے. ہمارے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی انتہائی غفلت کا شکار ہیں. یعنی ناٹ اونلی وی آر ان انفارمڈ, وی آر ال انفارمڈ, یعنی مجرمانہ غفلت کا شکار ہے. یعنی ایسی غفلت, ایسی اگنورنس یا ایسی ہیڈ لیسنس جو کہ ایک جرم ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہاں انسان مجرم بن سکتا ہے اس چیز کا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس ٹائم وہ ہمارے سامنے پچھلے دنوں ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا وائرل ہوئی تھی غزہ کی, غزہ کے حوالے سے, کہ غزہ کے اندر اللہ معاف کرے وہاں پہ قیامت انہوں نے برپا کی ہوئی ہے, جو جینوسائڈ انہوں نے کیا ہوا. ہمارے سامنے پھر یونیورسٹیز کے دو مثالیں پیش کی گئی اس ویڈیو کے اندر, بڑی مشہور وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, فیس بک پہ آئی تھی. ایک طرف کسی ویسٹرن یونیورسٹی کا وہ اسی موقع پر, یعنی اسی ٹائم کے اوپر دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, نان مسلم یونیورسٹی, ایک ویسٹرن کنٹری کے اندر. اور آن دا کانٹری اسی دن جس دن غزہ کے مسلمانوں پر قیامت برپا کی جا رہی ہے اللہ معاف کرے, اسی دن ہمارے ہاں ایک پیرلل ویڈیو دکھائی گئی جس کے اندر ہماری یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے جی, کنسرٹ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کنسرٹ میں شریک بچے ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں, میں سمجھتا ہوں وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے, یعنی لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دے آر ال انفارم, ان کو پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں, اللہ معاف کرے. یعنی امت کو اس طریقے سے فریگمنٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا, یعنی جس طرح حدیث میں آیا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد کے اندر, اور جسے کہتے ہیں نا وہ بخار کی حالت میں, کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور دیکھیں مسئلہ یہ کہ میرے یہاں پہ مثال آپ نے دیکھا ہے, بعض وقت ایک دانہ نکلتا ہے انسان کو, گردن میں نکل گیا, بیک میں نکل گیا, کسی جگہ پہ بھی دانہ نکل گیا, اس کی وجہ سے بخار چڑھ جاتا ہے, پورا جسم فرسٹریٹڈ ہے, ایجیٹیٹڈ ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, حالانکہ وہ اتنا سا حصہ ہے, اور تب تک تکلیف رہتی ہے جب تک کہ وہ درد, تب تک پورا جسم جو ہے بخار کی حالت میں, کیفیت میں ہوتا ہے, جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. हमें इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि हमारा हाथ काटा जा रहा है और पूरे जिस्म को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हर दौर के अंदर फितनों का पता होना बहुत जरूरी है। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी मशहूर हदीस है, आप फरमाया करते थे कि मैं लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते, मैं शर के बारे में सवाल करता, अल्लाह मुझे, अल्लाह के रसूल मुझे ये बताएं क्या क्या शर मुमकिन है, क्या होने वाला है, क्या ऐसी परेशानियां ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस आने वाली हैं, क्यों, ताकि मैं अपने आप को उससे बचा सकूं। खैर तो चलो आती रहती है ना, वो तो आएगी, उसमें क्या है, लेकिन शर के बारे में मैं आई वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द ईवल दैट वॉज अबाउट टू हैपन। बहुत सी हदीस है इसमें, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकूनु बैन यदै सा फितनुन कक़त्अल लैलिल मुज़लिम, क़यामत से पहले ऐसे फितने होंगे जैसे अंधेरी रात होती है। और आपने फरमाया कि युस्बिहु अर्रजुल फीहा मुमिनन व युमसी काफिरा, हालत यह हो जाएगी कि एक मर्द, एक बंदा सुबह करेगा इस हालत में कि मोमिन होगा, शाम के वक्त वो काफिर हो चुका होगा। इस तरीके से चेंजेस आएंगे, इतने तेजी से इंसान के पैराडाइम शिफ्ट होंगे, अल्लाह माफ करे, यानी सुबह मोमिन है, सच्चा मोमिन है, शाम को काफिर हो चुका, इतनी जल्दी चेंजेस और ड्रिफ्ट्स आएंगे, अल्लाह माफ करे। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो फितने जो रात की अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए जी उनके बारे में? बिल्कुल पता होना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह तआला बहुत बड़े इमाम है, वो कहा करते थे इन्नमा तुनक़ु उरल इस्लाम उरवतन उरवतन इज़ा नशा फिल इस्लाम मन लम यअरिफ अल जाहिलिया। वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बट जाएगा हिस्सों के अंदर और खत्म हो जाएगा जब तक के लोग जाहिलियत के बारे में इग्नोरेंस का शिकार हो जाएंगे। यानी एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, जो जो इवल है, जो इग्नोरेंस है, जो फितने हैं, जब तक आपको उनके बारे में पता है इस्लाम भी कायम रहेगा। जैसे जैसे आपने उसके बारे में इग्नोरेंस और हीडलेसनेस का शिकार हुए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इस्लाम भी उस टाइम खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से एक और रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ, कौल है इबन आबिदीन, बहुत बड़े अहनाफ के इमाम है, हनफी स्कॉलर है बहुत बड़े, वो कहते हैं मन जहिल बि अहली ज़मानी ही फहुवा जाहिल। असल जाहिल वो है जिसको अपने हालात का, जो आसपास हो रहा है उसका कुछ कर नहीं पता। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो स्कॉलरशिप है, और मैं माजरत के साथ कहता हूं, जहां पे मैं उस स्कॉलरशिप की बहुत ज्यादा कदर और अहमियत और उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वहां पे मैं समझता हूं कि हमारे यहां बहुत बड़ा तबका स्कॉलरशिप का हमारे उलमा के दरमियान, वो इन चीजों के बारे में उनको इग्नोरेंस, हालात हाजिरा का नहीं पता होता। मैंने वही बताया, नॉट ओनली देयर मिस इन्फॉर्म, देयर इल इन्फॉर्म, पता ही नहीं क्या चल रहा दुनिया के अंदर, अल्लाह माफ कर। वो जिस तरीके से कहा जाता है ना कि एकेडेमिक्स क्या करते हैं, उनका एक आइवरी टावर होता है जिसके अंदर वो बंद हुए हैं और वो इल्मी बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उनको उसका कोई पता नहीं, लेकिन बातें ऐसी करेंगे, ऐसी टेक्निकल बातें या ऐसी, यानी आपके फलसफियाना बातें होंगी, बंदा ही जाएगा क्या बात होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ एक कॉल मंसूब है, बड़ा खूबसूरत कॉल है और नसीहत है, मैं समझता हूँ कि ये जरा सुनिएगा, यानी ये वल्लाही हमारे लिए खासतौर पर फितनों के दौर में बहुत बड़ी हमारे लिए गाइडलाइन है। आपने फरमाया कि वह अलआकिली अतरगीब व तरहीब, बड़ी मशहूर किताब है इमाम मुंजरी की, उस किताब के अंदर उन्होंने इस कॉल को जिक्र किया। वो कहते हैं वह अलआकिली, एक आकिल, अच्छा ये उन्होंने नकल किया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब जो सहीफे हैं, यानी पुरानी किताबों में से ये चीज उन्होंने जिक्र की। वो कहते हैं वह अलआकिली यकून बसीरन भी जमानी, एक समझदार आदमी के ऊपर फर्ज है, जरूरी है कि उसको अपने हालात, अपने अपने दौर के हालात के बारे में बसीरत होनी चाहिए, उसको पता हो क्या चल रहा है आसपास। मुकबिलन अला शानी ही, अपनी औकात का भी बताओ, अपनी औकात का भी बताओ कि मेरी हालत क्या है, मैं किस कितने पानी में खड़ा हूं, भाई हालात ये हैं और मेरी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या है, भाई मेरे पास अभी इस टाइम क्या स्ट्रेंथ है कि मैं इस तरह के हालात के साथ निबट सकता हूं, और मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं किस तरीके से इंफ्लुएंस हो सकता हूं। यानी ना सिर्फ आपको एक्सटर्नल अफेयर्स का पता है बल्कि आपको अपने इंटरनल अफेयर्स का भी पता है। तीसरी चीज हाफिज़ुल लिसान, ही अपनी जुबान का, फितनों के दौर में जुबान पर कंट्रोल करने वाला हो। हमारे यहां सोशल मीडिया ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट है, सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया के अंदर वो ये है कि सोशल मीडिया ने हर बंदे को ये इख्तियार दे दिया कि हर बंदा जो चाहे
जब चाहे और जिसके बारे में चाहे वो बोल सकता। हर बंदा साहिबे राय बन गया, ये बहुत बड़ा मसला है। हम हर बंदे को साहिबे राय बना दिया और हर बंदे को साहिबुल लिसान भी बना दिया। हमारे यहां इस्लामिक स्कॉलरशिप, अगर हम अपनी लेगेसी की बात करें और इवन इस्लामिक स्कॉलरशिप में, हमारे यहां कभी भी हर बंदे को हर मामले के अंदर बोलने की इजाजत नहीं थी। ये बड़ा अहम बात है। हमारे यहां बकायदा ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको कहा जाता था साहिबुल अहलुर राय, जिनको अहलुर राय कहते थे, ये राय देने वाले लोग हैं, द पीपल ऑफ ओपिनियन। इसी तरीके से एक और टर्म इस्तेमाल होती थी अहलुल हिल वल अक्द, ये कुछ स्पेशल लोग होते थे, उलमा स्कॉलरली बहुत कमाल के एनालिसिस ये किया करते थे और आप समझ लें कि एनालिसिस की इनके पास अहलियत होती थी। तो इस तरह के लोगों को अहमियत यानी बात करने की इजाजत होती थी कि ये बात करेंगे पब्लिक अफेयर्स के बारे में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि ऐसे नौजवान आएंगे जिनको आपने रुवैबिवा कहा, बिल्कुल फजूल और फारिग किस्म के लोग, उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। यानी वो जैसे हमारे एक भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो कैसे लोग होंगे। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनकी अपने घर के अंदर ये औकात है और अहमियत है कि जब भी घर में कोई बात करने वाली होती है ना अहम, तो कहते बेटा जरा आप बाहर चले जाओ। जब भी घर के अंदर कोई सीरियस या अहम बात होती है तो बेटा जरा आप बाहर जाके बैठ जाओ। इनकी घर के अंदर ये औकात होती है और बाहर जाके सोशल मीडिया के बहुत बड़े फिलोसोफर होते हैं और वहां पे वो उम्मत के मसाइल पे डिस्कस कर रहे होते हैं, ट्वीट्स कर रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, उम्मत के मसाइल। बड़े मजे की बात है। और ऐसे ही है, आपने देखा ना कि अब मेरे मोबाइल मेरे पास है, ये स्टूडियो मेरे पास मौजूद है, मैं जब भी चाहूं मैं क्या करूं, मुझे कौन रोकने वाला है। वो हमारे यहां जैसे फैसलाबादी हमारे भाई कहते थे, कहते ये ऐसे हैं कि इनको घर में दूसरी दफा खाना लेने के लिए शिनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, मैं बताना पड़ता है मैं आपके खानदान से हूं यार। यानी इतने बेचारे इग्नोर्ड किस्म के लोग हैं, यानी जिनको कोई पूछता ही नहीं, टू दी एक्सेप्ट बुला दिए गए, नसीम मनसिया, यानी घर वालों ने भी बुला दिया इनको। लेकिन सोशल मीडिया की बहुत बड़ी सेंसेशन, यानी एक पर्सनालिटी है जनाब, बड़े फॉलोअर्स हैं इनके, अल्लाह माफ करें। तो हुआ ये कि रुवाई बिवा, यानी ये आजकल का दौर है कि हर बंदा बोल रहा है, हर बंदा जनाब जिसके मुंह में कुछ आ रहा है वो बोल रहा है और वो एक बहुत बड़ी सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। अभी मसला मैं एक किताब है यूट्यूब के हवाले से, लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, ये किताब मैंने पिछले दिनों पढ़ी। ये बेसिकली यूट्यूब की तारीख के ऊपर है, हिस्ट्री के ऊपर है पूरी, कि वो कहां से बना कैसे हुआ। तो उसके अंदर मैंने पढ़ा कि उनका ये मैंट्रा है यूट्यूब का, और उनका आप समझ लें कि ये उनकी स्टेटमेंट है, विजन या मिशन या जो भी मैंट्रा कह सकते हैं, कि हमने हर बंदे को प्लेटफॉर्म देना है, टू गिव एवरी इंडिविजुअल द वॉइस एंड द प्लेटफॉर्म टू बी हर्ड। ये उनका मैंट्रा है। आप गूगल की वेबसाइट पर जाके देख लें, आपको ये चीज मिल जाएगी। हर बंदे को चाहे वो जैसा मर्जी है आप उसे करें उसको। और ये वो वजह थी जिसकी वजह से सुभान अल्लाह यूट्यूब उतना ज्यादा पॉपुलराइज हुआ यूथ के अंदर, कि भाई हमने कुछ ना कुछ बोलना है। और हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड बोलना चाहता है, यूट्यूब ने कहा जी बिस्मिल्लाह बोले, जो चाहे बोले आप। बहरहाल तो एक तो ये अहम चीज है कि हमने इस दौर के अंदर जो उन्होंने कहा, और फिर साथ उन्होंने कहा वमन हसीब कलामहु औ मन हसब कलामहु मिन अमलिहि कल्ल कलामहु इल्ला फीमा यानी। उन्होंने कहा कि वो बंदा जो हमेशा जो ये समझता है ना कि मेरा कलाम करना इटसेल्फ एक अमल है, जिसको अमल कंसीडर करता है, यानी मैं अगर अच्छा कलाम करूंगा तो ये नेकी है और बुरा कलाम करूंगा तो बुराई है। हमारे यहां जुबान को हम कहते हैं यार मैंने सिर्फ कहा ही है, मैंने कौन सा किया है, सुना है ना जुमला, यार मैंने तो सिर्फ कहा है, मैंने कौन सा कर लिया है। हम समझते हैं कि शायद कह देना वो अमल में शामिल नहीं है, नहीं आपकी सोच है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके जहन में कोई बुरा ख्याल आए, अल्लाह ताला उसको पकड़ते नहीं है जब तक कि वो उस पर अमल ना कर ले या वो उस पर उसके बारे में बात ना कर ले। ये बात कर लेना मुंह से ये मतलब है अमल कर दिया आपने, बड़ी बात है। इस पर सोचिए गौर करो, एज लॉन्ग एज दिल में ख्याल आ रहे हैं बुरे, अब हर बंदे के दिल में अजीबो गरीब ख्याल आते हैं, अल्लाह माफ करे, बुराई के ख्याल, एज लॉन्ग एज वो दिल के अंदर महफूज है और आप उसकी कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की, इंशाल्लाह अल्लाह की पकड़ नहीं है। लेकिन जब वो जुबान पर आ गए या अमल में ट्रांसलेट हो गए, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो जो बंदा अपनी जुबान को अपने बोलने को अमल कंसिडर करता है ना, कल्ला कलामू हमेशा बात कम करता है, उसको पता है कि ये अमल मैं कर रहा हूं भाई, मेरा एक एक जुमला मेरा अमल है। अब वो सोच समझ के अमल करेगा कि मैंने अमल तभी करना है
जब कोई अच्छी अच्छा यानी अच्छा अमल करना है अगर करना है, और तभी करना है जब मैं इसके बारे में कॉन्शियस होऊंगा। एक और चीज जो बड़ी अहम है वो ये है, जहां पे मैंने आपको बताया कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का इशू है, वहां पे एक और इशू ये भी होता है कि बाज़ुकात इस तरह के टॉपिक्स इंसान को डिसफंक्शनल बना देते हैं। डिसफंक्शनल का मतलब ये है कि इंसान समझता है कि यार ये मेरे इख्तियार में नहीं है, तो अब मेरे बस में चूंकि है नहीं तो मुझे कुछ करना भी नहीं चाहिए, वो पैसिव हो जाता है इस बारे में। यह भी गलत रवैया, यह भी गलत रवैया है। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अहादीस के अंदर अशराकुस साआ का जिक्र किया, साइंस ऑफ द आवर, उसके एंड पे हमेशा अमल की भी बात की। और सहाबा ने पूछा अल्लाह के, अच्छा हम क्या करेंगे उस वक्त, ये नहीं कि बस बैठ जाएंगे भाई अब ये हो रहा है। वो कहते हैं ना, हमारे यहां आमतौर पर कहा जाता है कि एक डिवाइन स्कीम है, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन दिस डिवाइन स्कीम, यानी अल्लाह का एक प्लान है, अल्लाह की एक कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी के अंदर आपको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, जो हो रहा है बस होने दो उसको, पैसिव हो जाओ। हमारे यहां यह भी एक रवैया फितनों के बारे में पाया जाता है कि बिल्कुल लेट इट गो द वे इट इज, कुछ ना करो, डिसफंक्शनल हो जाओ, ये भी बात नहीं। सही अमल, सही रवैया, वो इख्तियार करने की जरूरत है। और वो कह, जैसे मैं आपको हदीस बताता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कैफ बिकुम औ यूशिकु अन यातिया ज़मानुन يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس। आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा तुम पर, क्यामत की बात है, क्यामत के करीब, कि तुम्हारे यहां जिस तरीके से छांटी की जाती है ना, आप कभी फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर करके पानी जब नीचे से निकल जाता है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, इंप्यूरिटीज जो है वो रह जाती हैं, तो बिल्कुल इस तरह के जो ऊपर जो गंद है इसको हुसाला कहते हैं, बिल्कुल खान जिसे कहते हैं ना फजूलियात, इंप्योरिटीज, ऐसे लोग रह जाएंगे, यानी अच्छे लोग दुनिया से निकल जाएंगे और पीछे इस तरह का गंद बाकी रह जाएगा, जिस तरीके से फिल्टर करके आपने क्या किया कि अच्छे लोगों को निकाल दिया और दुनिया के अंदर बुरे लोग रह गए। आपने कहा ये वक्त आ जाएगा, आपने फरमाया हालत क्या होगी, कद मरीजत उहूदहुम व अमानतहुम वख्तलफू, तीन चीजों का जिक्र किया आपने, कहा एक तो वादों के अंदर बेवफाई बहुत कॉमन हो जाएगी, वादों के अंदर बेवफाई बहुत हो जाएगी, अमानतों में खयानत बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी ट्रस्ट वर्दीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अल्लाह माफ करे। और तीसरी चीज आपने कहा आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाए, तीनों चीजें हमारे यहां सुभान अल्लाह 100% भरी पड़ी। फिर आपने फरमाया, तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वकैफा बिना या रसूल, अल्लाह के रसूल हमने क्या करना है ऐसे मौके पर। अब ये सुन लेने के बाद, अब ये नहीं कि भाई चूंकि हो रहा है यार अब इसको कबूल कर लो भाई, इवन अब जो फैल रहा है हमारे यहां एक पैसिव रवैया नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वकैफा बिना या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि अच्छा तुमने करना क्या है, तुम ये काम करो, तखुजून मा तअरिफून व तदरून मा तुनकिरून, आपने कहा जो अच्छी चीजें हैं ना कोशिश करना, जो वाज़े तौर पे अच्छी है ना उनको पकड़ना, उस पर अमल करना शुरू कर देना, और बुराई से जिस हद तक हुआ बचना, पहली चीज तो आपने ये जिक्र की। फिर उन्होंने कहा व तुकबिल, बड़ी अहम बात है, व तुकबिलून अला अम्री खासियतिकुम व तदरून अम्र आमतिकुम, आपने फरमाया कि जो ट्रेंड्स होंगे ना, जो लोग काम कर रहे होंगे उसको छोड़ के सिर्फ अपनी फिक्र करना। हमारे यहां कॉमन ट्रेंड्स बनते हैं, पता है ना आपको, उल्टी सीधी चीजों, लोग एक तरफ जाना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया की वजह से और बहुत सी वजह से, उन ट्रेंड्स को छोड़ के हौसले के साथ, हौसले के साथ अपने बारे में सोचना, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, ये लोग किधर जा रहे हैं, और यार इसके लिए आपके पास इल्म होना चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फितने के मेंशन करने के बाद, यानी अहादीस को अगर आप स्टडी करें, जहां जहां पे इसका जिक्र है वहां वहां पे या तो सहाबा सवाल करें या अल्लाह के रसूल को बता रहे कि भाई आपने ये काम करना, पैसिव नहीं होना, डिसफंक्शनल नहीं होना। हमारे यहां आमतौर पर इस, मैं कोई हदीस सुनाता हूं और इससे पता चलता है खैर के काम, यानी फितनों के दौर में कोई बंदा कह दिया मैंने कुछ नहीं करना, लेट इट हैपन, नहीं, जिस हद तक आप खैर फैला सकते हैं खैर फैलाएं, और बुराई को जिस हद तक रोक सकते हैं, और कॉमन ट्रेंड से बचना, ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के वक्त, इधर हदीस सुनिएगा, बड़ी अहम हदीस है, आपने फरमाया, मुसनद अहमद की हदीस है, इन कामत अला अहदिकुमुल क़ियामतु वफी यदिही फसीलतुन फल यग्रिसहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स पर क़यामत बर्पा हो जाए, यानी क़यामत आ गई और तुम जिंदा हो, तुम में से कोई बंदा जिंदा है और क़यामत आ गई, क़यामत का मतलब वही क़यामत, ठीक है ना, बड़ी क़यामत आ गई। अच्छा जब क़यामत आई तो आपने फरमाया और उसके हाथ में एक खजूर का पौधा हुआ, यानी इमेजिन करें कि एक बंदा है वो खजूर का पौधा लगाने जा रहा है, क्योंकि हदीस में आता है, हदीस में आता है कि क्यामत, और हमारा जैसे है कि क्यामत अचानक आएगी ना, अचानक क्यामत बर्पा होगी, इंसान को पता ही नहीं होगा कि ये हदीस इसमें मौजूद है,
तो अगर और लोग बताया आपने फरमाया लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होंगे उस वक्त अचानक क्यामत आ जाएगी। अच्छा हुआ ये आपने फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स खजूर का पौधा लेके जा रहा है कि किसी तरीके से वो उस पौधे को लगा दे और अभी उसके हाथ में पौधा मौजूद है वो बिल्कुल लगाने लगा क्यामत आ गई तो वो ये ना करे कि वो उस पौधे को छोड़ दे बल्कि वो पौधा लगा दे। फल यग्रिसहा यानी अगर उसके पास कुछ लम्हात भी हैं कुछ मिनट्स हैं क्योंकि क्यामत जब बरपा होगी तो डिस्ट्रक्शन शुरू होगी तो एकदम ये नहीं कि विद इन सेकेंड सब कुछ खत्म हो जाएगा इट विल टेक सम टाइम। तो उस टाइम के अंदर अगर तुम्हारे पास इतना टाइम और वक्त है कि तुम एक पौधे को जो तुम्हारे हाथ में लगा सक रहे हो उसको लगा सकते हो तो वो भी लगा दें। अब ये देखें ये हमारे दीन ने हमें एक पर्सपेक्टिव दिया कि खैर के काम में चाहे आपके पास कुछ लम्हात है कुछ मिनट्स है कुछ सेकेंड्स के लिए हो सकता है किसी के लिए हो सकता है कि उस दौरान किसी जानवर को कुछ देर के लिए वक्ती तौर पर फायदा हो जाए उसका किसी इंसान को फायदा हो जाए और आपको उसका फायदा हो जाएगा आपको नेकी मिल जाएगी उसकी। ये जो अंदाज और रवैया है कि मैक्सिमम चाहे फितने हो या ना हो एक मोमिन का काम यह है कि ही शुड बी एक्टिव किस चीज के अंदर फितनों के अंदर नहीं सोशल मीडिया के अंदर कीबोर्ड जिहाद करने के लिए नहीं कि मैं जरा इसके बारे में बात करूं वो जैसे हमने पहले बात की विदाउट नॉलेज नहीं बात इस चीज पे फोकस इस बात पे है कि हम क्या करें कि हम इन चीजों पर यानी जो खैर की बातें हैं उस पर बात करें और इस तरीके से जो दूसरी बातें हैं यानी शर की बातें हैं उसे अपने आप को अवॉइड करें। एक और चीज इसी के साथ मुतालिक है दो तीन मिनट में इंशाल्लाह बात कर लेता हूं वो ये है कि ऐसे मौके पर जहां पर इंसान डिसफंक्शनल क्यों होता है उसकी वजह यह है कि इंसान बाज़ुकात मायूस हो जाता है तो ऐसे मौकों के ऊपर अपनी उम्मीद को ना छोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरी उम्मीद होना चाहिए इंसान को। देखिए मैं सुभानअल्लाह जब इस तरह के बारे में देखता हूं ना दुनिया के हालात देखता हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बहुत शौक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ने का तो सारों को शौक है सारों को ये सीक्रेट सोसाइटीज इंशाल्लाह उस पर भी लेक्चर आ रहे हैं सीक्रेट सोसाइटीज में मैंने बड़ा कंटेंट तैयार किया इंशाल्लाह ये हमारे यहाँ इल्यूमिनाटीज फ्रीमेसंस ठीक है नाइट टेम्पलर्स और ये सारे इंशाल्लाह इस पर भी आपको एक स्पेशल सेशन होगा प्रॉपर एकेडमिक सेशन इंशाल्लाह। देखें जब इंसान इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में पढ़ता है और इसी तरीके से बाज़ुकात इन चीज़ों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना भी हो सिर्फ या जनरली जब इंसान बहुत ज़्यादा ईवल से एक्सपोज होता है ना तो कई दफ़ा इंसान को मायूसी होना शुरू हो जाती है लगता है शायद कुछ नहीं होगा यानी आप किताबें अगर आप पढ़ें और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ें किस तरीके से अल्लाह माफ़ करें और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जब वो एक्सपोज होते हैं और किस तरीके से बड़े बड़े कल्ट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं बैक एंड पे अल्लाह माफ़ करें तो इंसान ना बड़ा कई दफ़ा मायूस होता है खौफ भी आता है कि ज़ाहिर कुछ नहीं हो सकता और किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स जो है हमारी वो काम करती हैं सुबहान अल्लाह वो मतलब पूरी दुनिया यानी एक वो जो कहते हैं ना शैतानी हथकंडा है। तो ऐसे मौके के ऊपर एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पे जो एक मुसलमान और एक मोमिन के लिए पुर उम्मीद बन हो सकती है वो ये है या उम्मीद का बायस बन सकती है वो ये है यार ये कायनात चलाने वाले अल्लाह ताला के साथ बस ये जो अकीदा है ना कि इस कायनात का असल मालिक और खालिक अल्लाह है और वही इसका निजाम चला रहा है और शैतान अल्लाह का काउंटर पार्ट नहीं है। याद रखिएगा शैतान यानी ये आप ये समझ लें कि ये जंग अल्लाह और शैतान की नहीं है ये जंग आदम और शैतान की या इब्ने आदम और शैतान की जंग है। हम लोग आम तौर पे अल्लाह के मुखालिफ शैतान को खड़ा कर देते हैं कि यानी दो फोर्सेज हैं एक द फोर्स ऑफ ईविल है और द फोर्स ऑफ गुड है जिस तरीके से ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में ये हुआ जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो मजहब है उसके अंदर ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट है। ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि एक अच्छा खुदा है एक बुरा खुदा है दो खुदा है और ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दुनिया में जितना भी ईवल है वो बुरे खुदा की वजह से और जितनी अच्छाई है वो अच्छे खुदा की तरफ से तो एक बाइनरी उन्होंने क्रिएट की हुई है हम इस बाइनरी पर नहीं मानते यकीन रखते ये असल में शैतान अल्लाह के सामने उतना ही आजिज है ये बड़ी बड़ी ताकतें और कुव्वतें ये सब कुछ जो दुनिया के अंदर चल रहा है ये सब का सब अल्लाह के कंट्रोल और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी सूरह मरियम कहते हैं बड़ी अहम आयत है इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अब्दा सब अल्लाह की मखलूकात यानी दज्जाल से बढ़कर फितना क्या हो सकता है इमेजिन करें ना कि जिसके पास आसमानी यानी वो फोर्सेज ऑफ नेचर को भी मैनिपुलेट करेगा इतनी ताकत होगी उसके पास यानी उसके हुक्म से बारिशें होना शुरू हो जाएंगी उसके हुक्म से कहत होना शुरू हो जाएगा यानी फेमन और ड्राउट जो है वो आना शुरू हो जाएगा उसकी वजह से इस तरह की ताकतें उसके पास होंगी मुर्दों को जिंदा कर रहा होगा वो बंदा इस तरह की ताकतें उसके पास होंगी उसके बावजूद अल्लाह कहते हैं इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द جو بھی آسمان و زمین میں کوئی بھی مخلوق ہے, چاہے وہ شیطان ہے, ابلیس ہے, چاہے اس کے چیلے ہیں, چاہے وہ انسان ہے, مومن ہے, جو بھی ہے, وہ سب کے سب اللہ کے سامنے ایک عاجز بندے ہیں. That's it. Period. That's the end of the story. تو دجال بھی جو مرضی طاقت رکھتا ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے ماتھے سے جو کفر ہے یا کافر کا جو لفظ ہے وہ ریموو نہیں کر سکے گا. جو اس کی آنکھ خراب ہے اس آنکھ کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا. جو مرضی طاقت ہو اس کے پاس, اتنا وہ اللہ, یعنی اللہ اس کی لمیٹیشنز کو بھی پروو کریں گے دنیا کے سامنے کہ جتنا مرضی وہ بڑا بن جائے, بہرحال وہ ایک لمیٹڈ طاقت رکھتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے عاجز ہے. تو ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہنا چاہیے کہ جب ہم اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں نا تو اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ہم شکایتیں ہیں شاید میرے اختیار میں کچھ, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے تو پیسو ہوتے ہیں نا, اسی لیے پیسو ہو جاتے ہیں کہ یار لیٹ دی تھنگز ہیپن دی وے دے آر. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا, ہمیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا. تو بس یہی تھی کہ اس پہ ہم جو ہے نا امید نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے جس حد تک ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارا جو اگلا سیشن ہوگا اس سیشن کے اندر ہم ایکچولی سائنز آف دی آور کی مختلف کیٹیگریز کا ذکر کریں گے, اور اسی طریقے سے پھر ان کیٹیگریز کے حوالے سے کچھ سوالات جو اہم ہیں کہ جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے مثال کے طور پہ, کیا اللہ کے رسول نے اس کی بھی کوئی پریڈکشن کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ٹیکنوکریٹس کا دور ہے نا یہ, یعنی ہر جگہ ٹیکنالوجی ہے, انڈسٹریل ریولیوشن آیا, تو کیا اس طرح کی کچھ احادیث ملتی ہیں؟ اس طریقے سے جو احادیث ہمیں سائنس آف دی آور کے بارے میں ملتی ہیں ان کو کیا ماڈرن وے میں انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس طرح کی ایگزامپلس کے ساتھ انشاءاللہ ہم مختلف چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. تو ود دیٹ انشاءاللہ آئی لیو یو. اچھا, ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ یہ جو سیشن ہمارا تھرڈ سیشن ہوگا, یہ ہمارا سیشن وہ ہوگا, چلے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. بارک اللہ, آپ کے گروپ کے اندر آپ میں سے سارے اپنے گروپس میں ہیں نا ہمارے, تو پلیز گروپس میں ضرور اپنی اپڈیٹس دیکھ لیا کریں کہ تاکہ اس کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں بھی شیئر کرتا رہوں گا. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.